नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। श्री मोदी ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है और जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और महिलाओं को लाभ होगा।
अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को सत संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना भारत आज की वैश्विक स्थिति में अपना उचित स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र और सशक्त समाज की नींव हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम कक्षाओं से कहीं आगे व्याप्त है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक युवा शक्ति में चरित्र निर्माण और जिज्ञासा जगाते हैं। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। इससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन और मानव रहित पोतों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी बचाव में सहयोग जारी रखने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचों के भीतर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को सार्वजनिक वितरण संबंधी राष्ट्रव्यापी व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। देशभर में 112 आकांक्षी जिलों में मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों में खरीद, भंडारण और शिकायत निवारण सहित सार्वजनिक वितरण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है और आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ी है।
संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए दो केंद्रीय टीमें भी आ गई है। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, दोनों टीमें दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल EHRMS ई ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम के निर्णयों पर अपीलीय न्यायाधिकरण और किशोर न्याय बोर्ड को ई कोर्ट्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा और न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण की शुरुआत की गई है। इनका उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। बम्बई उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक जल स्रोतों में पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाई समुदाय के स्वच्छ हवा और पानी के मौलिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई नगर निकाय के उन दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिनमें 6 फीट से कम ऊंची मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि बाणगंगा तालाब जैसे विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDI के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने नाम पर आम सहमति बनाने के लिए पटना में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की। श्री रेड्डी ने संपर्क अभियान में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।